ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 14 வர்ஸ் நம்பர் 3 and 4. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கரனே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்தே ஹுவே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் அக்யாந்திமிரந்தஸ்ய ஜானஞ்சனாஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேனா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷவாம்ஷ ஸ்ரீரூபம் சாகர ஜாதம் சஹகண ரகுநாதன்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம். ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதா சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம்ஷ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபீஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதீதநாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவிந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. கிரந்த ஸ்ரீமத் பகவத் பகவத்கீதா மாதக்கி ஜெய ஹோ. பகவான் பகவதி மகத்வபூர்ண பாத் பகவதி மகத்வபூர்ண விஷய கே விஷய மே பாத் கர ரஹே ஹே தோ ஆஜ் ஹம் ஸ்லோக் நம்பர் 3 and 4 படேங்கே. பஹலே இஸ்கோ அத்யயன் கரேங்கே உஸ்கே பாத் இஸ்கோ சமஜ்னே கா பிரயாஸ் கரேங்கே. கிருபயா மேரே சாத் சாத் படனே கா பிரயாஸ் கீஜியே. ஸ்லோக் நம்பர் 3. பகவான் கேத்தே ஹே மம யோனிர்மஹத் ப்ரஹ்ம தஸ்மின் கர்பம் ததாம்யஹம் சம்பவஹ சர்வ பூதானாம் ததோ பவதி பாரத. மம யோனிர்மஹத் ப்ரஹ்ம தஸ்மின் கர்பம் ததாம்யஹம் சம்பவஹ சர்வ பூதானாம் ததோ பவதி பாரத. மம யோனிர்மஹத் ப்ரஹ்ம தஸ்மின் கர்பம் ததாம்யஹம் சம்பவஹ சர்வ பூதானாம் ததோ பவதி பாரத. சப்தார்த் மம அர்த்தாத் மேரா யோனி மத்தப் ஜன் மஹத் ப்ரஹ்ம அர்த்தாத் மஹத் கா மத்தப் ஹை சம்பூர்ண ஜோ பௌத்திக் ஜகத் ஹை நா ஜோ பஹுத் பிரம்ம ஹை பரம் ஹை உஸ்மே மே க்யா கர்த்தா ஹூன் பகவான் கேத்தே ஹை தஸ்மின் கர்பம் ததாம்யஹம் தஸ்மின் உஸ்கே அந்தர் கர்ப ததாம்யஹம் மே உஸ்கோ கர்ப பிரதான் கர்த்தா ஹூன் உஸ்கே அந்தர் கர்ப உத்பன் கர்த்தா ஹூன். ஔர் ஆகே கேத்தே ஹை சம்பவஹ சர்வ பூதானாம் ஜிஸ்கே த்வாரா சம்பவ ஹோத்தா ஹை சர்வ பூதானாம் சமஸ்த ஜீவோ கா. ஔர் உஸ்கே பாத் ததோ பவதி பாரத தத்பஷாத் பவதி மத்லப் ஹோத்தா ஹை ஹே பரத் புத்ர. பகவான் கேத்தே அனுவாத் தேக்கியே ஹே பரத் புத்ர பிரம்ம நாமக் சமக்ர பௌத்திக் வஸ்து ஜன்ம கா ஸ்ரோத் ஹை ஔர் மே உசி பிரம்ம கோ கர்பஸ்த கர்த்தா ஹூன் ஜிஸ்ஸே சமஸ்த ஜீவோ கா ஜன்ம சம்பவ ஹோத்தா ஹை. மத்லப் யஹான் பர் பகவான் சன்சார் மே ஜீவோ கி உத்பத்தி கிஸ் பிரகார் ஸே ஹோ ரஹி உஸ்கே விஷய மே பதா ரஹே ஹே. श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह संसार की व्याख्या है कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। अब यहाँ पर यदि संसार में किसी भी जीव का जन्म संभव हुआ है तो उसके भी दोनों कारण होंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग आपस में हुआ होगा, उसके बाद ही जन्म हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। भगवान कहते हैं संभवतः सर्वभूतानां, संभवतः सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महत तत्व के विषय में बताएंगे। ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, मम योनि महत ब्रह्म, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। मतलब अब देखो संसार में क्या है? जो भी वर्ड्स होते हैं उसके एक मतलब नहीं होते हैं, बहुत सारे मायने होते हैं, है ना। हर एक वस्तु के, हर एक शब्द के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड, मतलब एक ही वर्ड्स के दो मायने निकलते हैं। हिंदी में भी हम देखते हैं, अभी देखो आतंक का क्या मतलब है? जैसे किसी, हम बोलते हैं ना ये आतंकवादी है, बहुत ज्यादा अहिंसा करता है, हिंसक हिंसक है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं आतंक। लेकिन अगर कोई अत्यंत सुंदर व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे आतंक का सुंदर है ना। एक शब्द से दूसरी मायने निकलती, एकदम अलग बिल्कुल उसके। तो वैसे तो जो ब्रह्म शब्द होता है ना उसका मतलब होता है दिव्य आध्यात्मिक। यहाँ पर भगवान ने कहा मम योनिर महत ब्रह्म, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द उत्पन्न हुआ है वो दिव्य या आध्यात्मिक वर्ड्स के लिए नहीं कहा गया, ये महत ब्रह्म इस भौतिक प्रकृति को कहा गया है। तो इसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी कभी ब्रह्म कहलाती है क्या, जिसमें ये भौतिक प्रकृति है जिसके अंदर सारे गुण होते हैं वो कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो इस प्रकृति को यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है, इस भौतिक प्रकृति को। और भगवान कहते हैं तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, उसको मैं गर्भ प्रदान करता हूँ। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक साहित्य यानी मुंडक उपनिषद में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। अब ये श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मुंडक उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया? क्या कहा गया? तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते, यानी परम पुरुष भगवान उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। वही चीज जो हमको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि हम, वही चीज यहाँ मुंडिक उपनिषद 1.1.9 में कही गई है। तस्मादेतत् ब्रह्म नाम, उसका नाम ब्रह्म है यानी भौतिक प्रकृति का, और रूपम अन्नम च जायते, और भगवान उसके अंदर, भगवान क्या करते हैं जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। अब आगे श्री प्रभुपाद जी इस भौतिक प्रकृति के विषय में बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 2400 तत्व भौतिक शक्ति है और महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यय है, जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति यानी जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति यानी भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से जीवों की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति क्या है, 24 तत्व क्या है, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके बाद पंच ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक त्वचा रसना, उसके बाद पंच कर्म इंद्रियां हाथ पैर जीवा लिंग तथा गुदा, उसके बाद पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय रूप रस स्वाद गंध स्पर्श, और उसके बाद है मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद है प्रकृति के तीन गुण। ये 24 तत्व मिलाकर क्या बनता है? भौतिक प्रकृति बनती है। और ये भौतिक प्रकृति जो है, भगवान ने सातवें अध्याय में बताया मेरी कौन सी प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। और इससे परे भगवान कहते हैं अपरेयमेतस्त्वन्यान् प्रकृतिम् विद्धि मे परा, इसके अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति है। उसमें क्या है? जीव भूतान् महाबाहो ययेदम् धारयते जगत, जो इस जगत की समस्त वस्तुओं को विदोहन करती है, उसको भोग करती है, और उसका नाम है जीव, वो मेरी परा प्रकृति है। तो भगवान की इच्छा से क्या होता है? परा प्रकृति यानी भौतिक, और परा प्रकृति भौतिक यानी अपरा प्रकृति के साथ मिला दी जाती है, यानी भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, परा और अपरा दोनों का संयोग हो जाता है, जिसके बाद भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि इस भौतिक प्रकृति में जिसका भी जन्म हुआ है उसका कारण भगवान है। भगवान कहते हैं मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि हम, मैं ही समस्त संसार को, इस प्रकृति को गर्भ प्रदान करता हूँ, जिससे क्या होता है सर्व संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, जिससे समस्त जीवों का उत्पन्न होना संभव होता है। तो ये कैसे हो सकता है? भगवान वहां पर बैठे हुए हैं और हमें ऐसा दिखता नहीं है यहाँ पर संसार में, कि हमें इस क्या लगता है एक शरीर और दूसरे शरीर के मिलन से कोई दूसरे तीसरे शरीर का जन्म होता है। हमें ऐसा लगता है ना, माता पिता का ना संयोग होता है, उसके बाद बच्चे की उत्पत्ति होती है, ऐसा दिखता है ना। लेकिन भगवान कहते नहीं, वो गर्भ मैंने दिया है, सब संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं उनका जन्म मेरे कारण हुआ है। तो भगवान जो है इतना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बिच्छू अपने अंडे दान के ढेर के अंदर देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू दान से उत्पन्न हुई है, लेकिन दान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। कैसे हम देखते हैं, कभी कभी हमारे पास अनाज की बोरी होती है, चावल की बोरी होती है, और दो तीन महीने चार महीने के बाद हम उसको खोलते नहीं है, तो क्या होता है उसके अंदर से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, चावल में कीड़े आ गए हैं, मतलब पहले चावल में कीड़े नहीं थे लेकिन अब चावल ही कीड़े का, क्या चावलों के द्वारा कीड़े उत्पन्न हुए? नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई अंश रहता है, जैसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे, लेकिन हमें क्योंकि वो दिखा नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये जो कीड़े हैं वो खुद ब खुद उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त है और प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है। यानी कि अब क्या हुआ, भगवान बीज तो प्रदान करते हैं, मगर वो भगवान क्या करते हैं, बीज उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, भगवान बीज खाली प्रदान कर रहे हैं। कैसे? जैसे उन्होंने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे उसके अनुसार भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होती है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीव की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि इस संसार में जितने भी जीव हैं और जब वो अभिव्यक्त होते हैं संसार में, उनका जन्म होता है, तो उसका मूल कारण भगवान है। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 4 में इसी बात को क्लियर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनि अहम् बीज प्रदपिता सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीज प्रदपिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीज प्रदपिता सर्वयोनिषु कौन्तेय। शब्दार्थ देखिए, सर्व योनि जी जितनी भी योनियां हैं संसार में कुंती पुत्र, मूर्तयः संभवन्ति यह, जो जो भी यहाँ पर मूर्तिमान हैं, जो जो यहाँ पर प्रकट हैं, दिखती हैं, वो भगवान कहते हैं कि तासाम ब्रह्म महत् योनि। तासाम मतलब उन सबों में, ब्रह्म महत् योनि यानी उसका जो हर एक जीव की जो योनि होती है उसका जो मूल कारण है वो क्या है, प्रकृति है, जन्म का स्रोत। तो फिर भगवान कहते हैं उस प्रकृति को क्या करता हूं मैं, अहम बीज प्रदपिता, मैं उस प्रकृति को बीज प्रदान करता हूं। अनुवाद देखिए, हे कुंती पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हुई है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। जो कुछ भी संसार में आपको दिख रहा है, जितने भी जीव हैं, वो सब भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का संयोग है। जीव ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता प्रकृति तथा बीज प्रदाता पिता के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। तो हमारे इस संसार में होने का कारण क्या है, हम सब इन संसार में आए हैं, तो उसका मेन कारण भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 3 में, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, कि मैं इस पूरी प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में कुछ भी बाई चांस नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये प्रकृति जो है वो बाई चांस हो गई है, हमको ऐसा लगता है कि बस माता और पिता का संयोग हो गया और एक जीव का जन्म हो गया। और वो अभी कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि जीव ये मनुष्य है वो बने हैं बंदर से, बंदर जो है वो सोफेस्टिकेटेड होता गया, उसके बाल खत्म हो गए और फिर उसने कपड़े पहनना शुरू कर दिया, दुम भी उसकी खत्म हो गई और वो मनुष्य बन गया। लेकिन भगवान कहते हैं, यहाँ पर बताया सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति, कि जितनी भी योनियां हैं तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रदपिता। यहाँ पर भगवान एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ लोग का ये प्रश्न होता है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, है ना। बीज भगवान कहते हैं सब कुछ जो भी है उसका पहले बीज आया। कुछ बोलते हैं ना, पहले वृक्ष आया या पहले बीज आया, तो भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदान करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बताया यह संसार की व्याख्या कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा यानी क्षेत्र यानी शरीर और आत्मा के संयोग से होता है। यानी भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, कोई भी वस्तु यहाँ संसार में बाई चांस नहीं हुई है। क्षेत्र यानी ये भौतिक जो शरीर है और क्षेत्रज्ञ यानी ये स्प्रिट है, मैटर स्प्रिट, उनसे मिलकर, और इन दोनों से मिलकर भी नहीं, इसके अंदर भगवान कहते जब तक मेरा हस्तक्षेप नहीं होता है तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, जब तक मैं उसे गर्भ प्रदान नहीं करता हूँ तब तक तो इस सृष्टि में किसी की उत्पत्ति संभव नहीं है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण पहले भी बता चुके हैं 7.7 में। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे होते हैं उसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि मेरे आधार पर है। तो अगर हम सोचें कि धागा नहीं है, मतलब अगर कोई ये सोचता है कि बस मोती है वो ऐसे बैलेंस में खड़े हैं, धागा होता ही नहीं है, धागे क्योंकि धागा दिख नहीं रहा है तो धागा है भी नहीं। तो ये भगवान ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि धागे के बगैर कोई भी मोती जो है वो बैलेंस में ऐसे खड़ा नहीं होगा बल्कि बिखर जाएंगे। उसी प्रकार यह संसार जो है वो इतना सिस्टमेटिकली जो चल रहा है, हर कोई वस्तु जो सिस्टम से चल रही है, इसका इसकी वजह क्या है कि भगवान इसको इस पूरी प्रकृति को भगवान का आधार प्राप्त है, ये भगवान के आश्रय। भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम, नहीं 9.10 में भगवान बताते हैं मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने कौनते हैं जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बारम्बार सृजन होता है और इसका अंत में इसका लय होता है। तो ये जो पूरी सृष्टि का जो सिस्टम है वो भगवान की इच्छा पर और भगवान के आधार पर टिका। तो इस भौतिक प्रकृति में जीव कैसे आता है, श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि भगवान की इच्छा से यह अपरा प्रकृति यानी भौतिक बड़ा प्रकृति भौतिक यानी अपरा प्रकृति में मिला दी जाती और जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। शुरू में क्या किया भगवान ने, अपनी इच्छा से इस भौतिक प्रकृति को उत्पन्न कर दिया। अब क्या होता है जब जीव को उत्पन्न किया, तटस्थ शक्ति है जीव भगवान की, वो तटस्थ शक्ति पहले से ही भिन्न शक्ति, ऐसा नहीं कि भगवान में से निकली है या बाद में भगवान के अंदर लीन हो जाएगी, ये भगवान की ही शक्ति है। और फिर जब तटस्थ शक्ति जब भगवान की है उसको भगवान ने एक ही चीज उसको फ्रीडम दिया कि तुम इच्छा कर सकते हो, जिधर जाने की इच्छा करो, मेरे पास आना चाहो तो मेरे पास आओ, अन्यथा तुम भौतिक प्रकृति की ओर जाओ, जिस जिधर तुम्हारी जाने की इच्छा हो उधर तुम जाओ। तो भौतिक ये जो तटस्थ शक्ति है उसने इस फ्रीडम का, जिसने फ्रीडम को सही तरह से मिसयूज नहीं किया, वो भगवान के अंतरंग शक्ति की ओर चले गए, और जिसने इस फ्रीडम का मिसयूज किया उन्होंने क्या सोचा, केवल भगवान ही भोक्ता क्यों बने, अहम ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं भोगी बनूं, मैं ईश्वर बनूं, मैं बलवान बनूं, मैं सुखी बनूं। तो जीव जो है वो अपनी इच्छा, अपनी प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है और इस भौतिक जगत में आकर फिर विभिन्न योनियों में उसको घूमना पड़ता है। जैसे जैसे उसकी इच्छा होती है उसी के अनुसार उसको योनि, वास्तव में क्या है, लाइफ इज अ गेम, है ना, ये गेम जो होती है हर किसी को उसमें अपनी स्वेच्छा से खेलने की पूरी परमिशन है, वो किस तरह की से खेलना चाहता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप इस गेम को किस प्रकार से खेलना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, गो अहेड। तुम्हें जिस प्रकार से इस लाइफ को खेलना है, जिस प्रकार से इस लाइफ को जीना है, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, यू कैन गेट चॉइस आफ्टर चॉइस आफ्टर चॉइस आफ्टर चॉइस। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप इस चीज को नहीं कर सकते, आपकी इच्छा को पूरा फ्रीडम दिया गया और अगर आपकी चॉइस सही है तो आप आगे उन्नति करोगे, और अगर आप गलत चॉइस करते हो, गलत रास्ते को पकड़ते हो, तो क्या होगा? पुनर्मुषिका भवंतु। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर स्टोरी बताते हैं कि एक चूहा था, वो गया एक संत के पास और कहा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हम भी जाते हैं ना संतों के पास, बहुत दुखी हूँ कृपा कीजिए, कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं मांगते बल्कि भौतिक कष्टों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते। तो वो चूहा भी बहुत ज्यादा दुखी था और कहा कि मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, वो सदैव मेरा पीछा करती है। तो उस संत ने कहा फिर मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं, बोला मुझे बिल्ली बना दो। बोला अच्छा तथास्तु, अब तुम बिल्ली बन जाओ। वो चूहा बिल्ली बन गया और उसके बाद वो कुछ दिन के बाद वापस से संत के पास आया, बोला बहुत दुखी हूँ। बोला बिल्ली बना? बोला और भी ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या बनाओ? बोला कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया। फिर वापस कुछ दिनों के बाद वापस आया संत के पास, बोला दुखी हूँ। संत ने कहा अब क्यों? बोला अब शेर मेरे पीछे लगा है। बोला अच्छा अब क्या करूं? बोला शेर बना दो मुझे। बोला ठीक है। उसको शेर बना दिया और वो जो शेर है वो संत को ही खाने लग गया कि मैं अब आपका भोग करूंगा, मैं अभी आपको खाऊंगा। संत ने कहा मैंने तुमको अपने इतना पावर दिया और तुम मैं ना मुझे ही खा रहे हो, अभी मैं तुमको वापस से चूहा बना देता हूँ। पुनर्मुषिका भवंतु, अभी तुम्हें वापस से चूहा बना देता हूँ, तुम्हें ना इसी के लायक हो। तो भगवान ने भी हमें, जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं और हमें भगवान मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं, और मनुष्य बनने के बाद हम भगवान को ही समाप्त करना चाहते हैं, खुद भगवान खुद भोगी बनना चाहते हैं और भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। कोई भगवान नहीं है, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ। जीव जब ऐसा करता है तो भगवान उसे क्या कहते हैं? सदसद योनि जन्मसु, फिर उनको अलग अलग योनियों में भेजते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपनी चॉइस को बिल्कुल सही रखेंगे तो क्या होगा? हमारी उन्नति होगी। यदि ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा हम अपने और भगवान की स्थिति को जानेंगे, जैसे कि भगवान ने हमें बताया था 13.35 जो 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, अंतर माना उसके डिफरेंस को, उसके फर्क को जानता है, कैसे जानता है? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु प्राप्त करके उसको समझता है। उसके बाद भूत प्रकृति मोक्षम च, फिर वो इस प्रकृति से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और यही भवबंधन से मुक्ति जो है, भवबंधन से मुक्ति की जो विधि हम जानते हैं, उससे क्या होता है? ये विदुर यान्ति ते परम, यही परम लक्ष्य है जीवन का। तो इस संसार में प्रॉब्लम क्या है कि जब जीव को भौतिक शरीर मिलता है तो क्या करता है? इस भौतिक जगत में ही आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस संसार में आकर जीव की केवल एक ही इच्छा होती है, आनंद चाहिए, और मजा चाहिए। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि जिस जिस वस्तु से वो आनंद प्राप्त करना चाह रहा है वही वस्तु उल्टा उसके दुख का कारण बनती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया 5.22 में, ये ही संस्पर्श जाभोखा दुख यो नय एवत आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तुम यदि बुद्धिमान हो तो फिर तुम्हें इन भौतिक वस्तुओं के आनंद की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही संस्पर्श जाभोगा दुख यो नय एवत। इस संसार में जो वस्तु से तुम आनंदित होना चाहते हो वही वस्तु तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। क्यों? आद्यंतवंत कौन्ते, क्योंकि इस संसार में हर वस्तु का आदि है और अंत है, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत हो, तुम इटर्नल हो, तो तुम्हें ये भौतिक जो असुख और अनित्य वस्तुएं हैं वो तुम्हें कोई सुख प्रदान करने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं वो सारी वस्तुएं यदि हमें प्राप्त हो जाएं, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये मानी हुई बात है कि संसार में यदि किसी को खाने की इच्छा है तो संसार के सारे रेस्टोरेंट्स यदि उसके नाम पर लिख दिए जाएं तो भी उसे आनंद नहीं आएगा। जब किसी को यदि कपड़े ड्रेसेस पहनने का बहुत ज्यादा शौक है तो सारे शोरूम्स हैं उसके नाम पर लिख दिए जाएं तभी भी उसे आनंद नहीं आने वाला। इस भौतिक जगत में किसी इंसान को कोई भी वस्तु प्राप्त करने की यदि इच्छा है तो यदि वो भौतिक वस्तु है तो उसे आनंद प्रदान नहीं कर सकेगी, क्योंकि शास्त्र कहता है नाल्पे सुखम, क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं अल्प हैं। बल्कि सुख तो क्या, भगवान ने कह दिया अनित्यम असुखम। इस संसार में दिख रहा है कि ये सुख है, लेकिन ये क्योंकि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है तो सिर्फ प्रतिबिंब में दिखेगा। जैसे आईने में कैसे हमें अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु मिलेगी दिखेगी तो कितनी ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, मगर हम उससे कभी भी तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो क्या है, केवल प्रतिबिंब है। तो ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत में जो आनंद हमें दिख रहा है वो केवल प्रतिबिंब है, यदि उसको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो केवल सर फूटेगा, दुखी मिलेगा, कभी आनंद प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में हम सब आनंद चाहते हैं तो, परंतु क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चित आनंदमय है, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं। परंतु क्योंकि हम सच्चित आनंद का अंश होते हुए भी इस भौतिक प्रकृति में आनंद ढूंढ रहे हैं, तो जब तक हम अपने जीवन में किसी आध्यात्मिक भगवान को, कृष्ण तत्व को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम कृष्ण को नहीं अपने जीवन में लाएंगे, तब तक हमारे संसार में, हमारे जीवन में कभी भी आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए वेदांत सूत्र का पहला मंत्र क्या है, अथासो तथासो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आप इस संसार में मनुष्य योनि प्राप्त करके संसार में आए हो तो वास्तविक में अगर तुम आनंद बनना चाहते हो, वास्तव में यदि उन्नति चाहते हो तो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है क्या, ब्रह्म जिज्ञासा। वास्तव में तुम भगवान की जिज्ञासा करो कि कृष्ण कौन है, क्यों, क्योंकि कृष्ण रसराज है, कृष्ण ही आनंद प्रदान कर सकते हैं, कृष्ण ऋषिकेश है। तो यदि हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका है कि भगवान की सेवा की जाए, क्योंकि भौतिक कोई भी कार्य जब हम करते हैं वो आनंद प्राप्त करने के लिए करेंगे, लेकिन क्या होगा, उससे हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे, ऊब जाएंगे। कोई भी भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए आप कार्य करो तो उसे तो थक जाओगे, बेजार हो जाओगे, लेकिन वही कार्य यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे अब कोई अगर ना न्यूज़पेपर सेल करता है, सुबह सवेरे उसको वो निकलता है साइकिल पर, पूरे बहुत सारी जगहों पे न्यूज़पेपर लेकर सेल करके आता है, उसको धन भी मिलता है उसकी बदली में, लेकिन जब घर पे आता है तो कितना टायर्ड होता है, थका हुआ होता है कि सुबह से मैं गर्मी में जा रहा था और कितना ज्यादा था। उसी तरह उसी की अपेक्षा जब अगर कोई भक्त बहुत सारी भगवद गीता लेके जाता है और उनको सेल करता है, बहुत ज्यादा सेल करता है, बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं, एक एक व्यक्ति को बताना पड़ता है सेल करके, जब वो इवनिंग में जब वो मंदिर आता है तो उसकी फेस पे कितनी संतुष्टि होती है, कितनी खुशी होती है, कितना उसको अच्छा, हालांकि उसको पैसे भी नहीं मिलने वाले, वो सारा तो वो मंदिर के अकाउंट में जाएगा, लेकिन फिर भी उसको एक आध्यात्मिक खुशी मिल रही होती है। और जब उसको प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ आप कितना अच्छा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए आपने कार्य किया, आपको अवश्य भगवान बहुत ज्यादा आशीर्वाद देंगे, तो और भी ज्यादा उत्साह से और भी ज्यादा उमंग के साथ वो नेक्स्ट डे कार्य करेगा। उसी तरह जो आध्यात्मिक कार्य होता है ना, उसी में केवल हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम भौतिक हैं नहीं, हम स्वयं आध्यात्मिक हैं, इसीलिए हमें केवल आध्यात्मिक वस्तु ही संतुष्ट कर सकती है। तो श्लोक नंबर 3 में भगवान ने बताया है कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि हम, मैं इस ब्रह्म के अंदर, अर्थात महद ब्रह्म किसको कहा गया है, जो भौतिक प्रकृति है उसको कहा गया है महत ब्रह्म, और इसमें भगवान ने कहा मैं गर्भ देता हूँ, और उसके बाद क्या आता है, संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, और इसी के कारण समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। फिर भी भगवान ने इसी चीज को आगे श्लोक नंबर 4 में समझाया, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया, जितनी भी योनियां हैं वो संसार में उत्पन्न होती हैं, तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदपिता, उनको उनका बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उत्पन्न होता ही है कि जब भगवान बीज देने वाले पिता हैं, तो हमें भगवान अपने से दूर क्यों कर देते हैं, हमें भगवान इस भौतिक प्रकृति में क्यों डाल देते हैं। तो इसको वैसे भी हमने बहुत तरीके से समझाया है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात क्या है कि कृष्ण हमें अपने से दूर नहीं करते, कृष्ण हमारा हाथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमने कृष्ण को छोड़ा है। जैसे दो व्यक्ति हो और पहाड़ पर चल रहे हो, एक व्यक्ति ऊपर है और दूसरा नीचे है, और दूसरे ने क्या किया, पहले वाले ने एक रॉक पकड़ा, रस्सी, और दूसरा वाला उसको खींचता हुआ आगे जा रहा है। मतलब पहले वाला जो है वो एक्सपर्ट है, वो आगे जा रहा है, और दूसरे वाला रस्सी से आगे जा रहा है। और आगे जाते जाते उसने देखा उस जो पहाड़ है उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर बाग लगे हुए हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे फल हैं। तो वो क्या सोचता है कि मैं इसके पीछे पीछे क्यों जाऊं, मैं क्यों ना इन फलों से आनंद लूं। तो क्या करता है, उसका हाथ छोड़, वो रस्सी को छोड़ देता है, वो रस्सी को छोड़ देता है और उन फलों की ओर आकर्षित हो जाता है और उन फलों का स्वाद लेना चाहता है। लेकिन बाद में देखता है कि वो तो बहुत आगे निकल गया, अब क्या करना है, उस तक पहुंचने के लिए उसने जिसने हाथ छोड़ा है, रस्सी छोड़ी है, उसी को आगे जाकर उसके रस्सी को वापस से पकड़ना है। उसने उसको बोला नहीं था रस्सी छोड़ो, लेकिन उसने छोड़ दी थी, अब उसी को वापिस से उस रस्सी को पकड़ना है। उसी तरह से हम लोग ने भगवान की शरण अस्वीकार कर दी। हम भगवान की शरण में थे, तटस्थ शक्ति है, परंतु भगवान की शरण में थे, लेकिन भगवान की शरण स्वीकार नहीं की। अब हम भौतिक जगत में हैं, तो वापिस से भगवान की शरण को, यदि हम भगवान के चरणों को वापिस से पकड़ेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त करेंगे। फिर भी भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि वो देख रहे हैं कि हमने उन सानिध्य को छोड़ दिया है, उस रस्सी को छोड़ दिया है, हम भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, फिर भी भगवान हम पर कृपा करते हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो इस जगत में ही ऐसे अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, अपने उपदेश भेजते हैं। यहाँ संसार में गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा बारंबार हमें ये शिक्षा देते हैं कि भौतिक जगत तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, तुम वापस से आध्यात्मिक जगत में आ जाओ। तुम्हें क्या करना है, ज्ञान की तलवार से इस भौतिक जगत की आसक्ति को काटना है और फिर ऐसी जगह पर आना है, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद तुम्हें वापस आना ना पड़े और वो केवल मेरा धाम है, तुम्हें उधर आना है। तो भगवान हम पर बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, हमारी इच्छा ना होते हुए भी बारंबार किसी न किसी तरह से हमें अपना यह संदेश पहुंचाते हैं ताकि हम पुनः इस दुखों भरे जीवन को से पार होकर भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता, कि मैं बीज देने वाला पिता हूँ, किसको देता हूँ, महद योनिर, प्रकृति माता के समान है, और जब मैं बीज देता हूँ तो सारी योनियां उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सारी योनियां उत्पन्न होती है, मतलब अभी भगवान बीज तो दे रहे हैं परंतु बीज निर्मित नहीं कर रहे हैं, बीज पहले से ही है, भगवान खाली उस बीज को प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। यहाँ पर जो बताया गया है वो, अब देखो प्रलय भी चार प्रकार के होते हैं, आपको पता है चार प्रकार के प्रलय होते हैं। एक छोटा सा प्रलय होता है जब एक मनवंत्र समाप्त होता है, टोटल कितने मनवंत्र है, 7, और एक मनवंत्र जब समाप्त होता है तो छोटा सा प्रलय होता है। दूसरा प्रलय कब होता है, कि ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होने के बाद, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो क्या होता है, एक प्रलय आता है। उसमें क्या होता है, नीचे के 11 लोग समाप्त हो जाते हैं, टोटल 14 लोग है ना, ऊपर के 3 लोग नहीं रहते, लेकिन नहीं होते हैं ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक इत्यादि, ये नहीं विनष्ट होते हैं, नीचे के 11 लोग नाश हो जाते हैं और फिर पुनः सृष्टि होती है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब महाप्रलय आता है। फिर क्या होता है, सारे जीव जो हैं वो महाप्रलय में, जितनी भी संसार में सृष्टि की होती भगवान ने, वो सब कहाँ चले जाते हैं, कारण दक्षाय विष्णु के अंदर चले जाते हैं। और एक चौथी प्रलय होती है, उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, यानी आत्मा जब भवबंधन से छूटकर भगवान को प्राप्त कर लेती है, पुनः भगवान के पास आ जाती है। यहाँ पर भगवान को कौन सी प्रलय के विषय में बता रहे हैं, जो महाप्रलय होती है जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है और सारे जीव जब कारण दक्षाय विष्णु के अंदर चले जाते हैं, तो सारे जीव बीज के रूप में उनके पास हैं। फिर जब पुनः सृष्टि होती है तो क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं सर्व योनिषु कुन्ते मूर्तयः संभवन्तिया। फिर भगवान बीज प्रदान करते हैं और फिर अलग अलग योनियां, यानी कि जितने भी जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं तो उस प्रकार उसको जन्म मिलता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि ऐसे जीव खाली इस लोक में नहीं होते हैं, अपितु बहुत सारे लोकों में होते हैं, यहाँ तक कि जो ब्रह्म लोक है, सर्वोच्च लोक है, वहाँ पर भी होते हैं, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, हर जगह जीव होते हैं। और महाप्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि होती है तो भगवान हर एक को अपने कर्मों के अनुसार पुनः जीवित करते हैं। तो यह सारे जीव भौतिक प्रकृति यानी माता तथा बीज प्रदा कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। और जैसे ही उसने जैसे जैसे पूर्व कर्म किए थे उसके अनुसार उनको विविध रूप प्राप्त होते हैं। अब जैसे ही जब जीव को शरीर मिलता है तो क्या होता है, वो भौतिक प्रकृति के अंदर आ गया। भौतिक प्रकृति में जैसे ही आता है तो गुणों का प्रभाव चालू हो जाता है, फिर गुण उस पर आक्रमण करने लगते हैं, और जिसके कारण उसको क्या होता है, सदसद योनि जन्मसु, उसे अच्छे और बुरी योनियों में पुनः 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 पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम। तो इस प्रकार उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, फिर गुण उस पर क्यों हावी होते हैं, गुणों का प्रभाव क्यों होता है। वास्तव में यही बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह अध्याय बताया, क्योंकि इस अध्याय का नाम है थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के तीन गुण। तो श्लोक नंबर 5 से भगवान उन गुणों के विषय में बताना शुरू करेंगे। आप सब कृपया प्रार्थना कीजिएगा कि हम अच्छे से समझ सकें, और साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।